ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद के दसवें अध्याय का श्लोक संख्या 17। नाहं विशंके सुरराज वज्रात् नत्रक्षशूलान् यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोमानिलवीतपास्त्रात् छङ्के भृशं ब्रह्मकुलाबमानात्। शब्दार्थ न, नहीं, अहम, मैं, विशंके, भयभीत हूँ, सुरराज वज्रात, स्वर्ग के राजा इंद्र के वज्र से, न, नहीं, त्रक्षशूलात, शिवजी के त्रिशूल से, न, नहीं, यमस्य मृत्यु के अधीक्षक यमराजी के दंडात दंड से, न, नहीं, अग्नि अग्नि के अर्क सूर्य के असह्य ताप से, सोमा चंद्रमा से, अनिल वायु से, वित्तपा धन के स्वामी कुबेर से, अस्त्रात अस्त्रों से, शंके भयभीत हूँ, भृशम अत्यधिक, ब्रह्मकुल ब्राह्मण कुल के अवमानात अपमान से। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के वज्र का भय है, न नागदंश का, न भगवान शिव के त्रिशूल का, मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज जी के दंड की परवाह है, न ही मैं अग्नि तप्त सूर्य चंद्रमा वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से सदा डरता हूँ, मुझे इससे बहुत भय लगता है। तात्पर्य, जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, उन्होंने वैष्णव अपराध को गंभीरता से स्पष्ट संकेत किया था। उन्होंने वैष्णव अपराध की तुलना मतवाले हाथी के साथ की थी। जब मत हाथी उद्यान में घुसता है तो वह सारे फल फूल को उजाड़ देता है। इसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है, थोड़ा सा कम करो, तो वह सारे फल मूल उजाड़ देता है। इसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है तो वह अपने आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट करता है। ब्राह्मण का अपमान अत्यंत घातक होता है और यह महाराज रहुगण जानते थे। अतः उन्होंने अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। यद्यपि अनेक दारुण वस्तुएं हैं, यथा वज्र, अग्नि, यमराज जी का दंड, शिव जी का त्रिशूल आदि आदि, किंतु इनसे मैं एक भी किंतु इनमें से एक भी जड़भर जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य दारुण नहीं है। अतः महाराज रहुगण तुरंत ही पालकी से नीचे उतरे और ब्राह्मण जड़भरत से क्षमा याचना के लिए उनके चरण कमलों पर गिर गए। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्तेव 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 गतिर्यन्यथा। भूतिर्महद्भिर्यैमां पुरो विभो निर्मायसेते यदमूषु पुरुषः। भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः। सो अलम कृषिष्ठ भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में इस भागवत कक्षा में हम स्वागत करते हैं। प्रसंग बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, इन्हें दोबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल हम आपसे दो प्रश्न करेंगे, फिर हम अपना वक्तव्य प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, राजा कहाँ जा रहे थे? कपिलाश्रम जा रहे थे। बहुत अच्छा है। किस लिए जा रहे थे? भागवत सत्संग के लिए जा रहे थे। क्या गुजरात आदि में उनको सत्संग नहीं मिला? तो राजा जा रहा था और उनके मन में भाव था कि मैं सत्संग के लिए जा रहा हूं। राजा अच्छा किया था, इतना दूर से सफर करके कपिलाश्रम, कहीं पश्चिम भारत और कहीं पूर्व भारत, और जाने आने में कितना टाइम लगता होगा, और राज्य शासन है, ये सब छोड़ छाड़ करके के राजा जा रहा था, अच्छा कर रहा था। कि ठीक था, चोर डाकू बदमाश, ये सोचने लायक बात है कि कि राजा अपना राज कार्य का परित्याग करते हुए और इतना लंबा सफर, ऐसा 2-5 दिन की बात तो नहीं है। आप लोग एक आइडिया लगाइए, जब राजा जा रहा था तो राजा के साथ उसके मंत्री भी होंगे, अकेले कभी नहीं जाता राजा, 7 प्रकृतियों के साथ चलता है। प्रभुपाद ने लिखा है प्रकृति क्या होती है, राजा होता है उसका सेनापति, उसके अमात्य, मंत्री, सेना, चतुरंगिणी सब चलता है। अकेले चला था? नेवर। तो राजपाट का परित्याग करते हुए राजा चल रहा है सत्संग करने के लिए। सत्संग किस बात का, किस विशेष उद्देश्य से? अब देखिए, राजा जरूर एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति था, कोई भी इस संसार में बिना प्रयोजन का कुछ भी नहीं करता। संस्कृत में एक कहावत है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्ते। मंद व्यक्ति, पागल व्यक्ति, जड़ व्यक्ति भी बिना प्रयोजन का कुछ नहीं करता। और राजा जानता था उनके पास तरह तरह के प्रयोजन है, सबसे बड़ा प्रयोजन है प्रजा शासन, लेकिन फिर भी जा रहा है। तो निश्चित रूप से राजा तो बेवकूफ नहीं था, राजा महान विद्वान था। वहां हमको देखना पड़ेगा, कोई एक विशेष क्रिया होगी, कोई एक विशेष उद्देश्य होगा जो इस उद्देश्य से महत्तर होगा, अन्यथा राजा की मूर्खता सिद्ध हो जाएगी। और राजा बड़ा श्रद्धालु था। श्रद्धा का संकेत क्या मिलता है कि जैसे उनको पता चला कि जड़ भरत कुछ बातें अटपटी कर रहा है, अटपटी इन द सेंस कि बहुत ऊपर लेवल की बात कर रहा है, हे राजन, राह राहियों के लिए होता है, भोजन खाने वाले के लिए होता है, स्वामी सेवक ये अवकाश मात्र है, पलभर में बदल सकता है। वो राजा का माथा ठनका, क्या कह रहा है ये, कैसे गंभीर दर्शन शास्त्र को उपस्थापन कर रहा है राजा। और तुरंत गिरा उनके चरणों में। इससे पता चलता है कि राजा का अहंकार पतला था, अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति झुकता नहीं है। चाणक्य पंडित ने कहा है, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जनाः, शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमंती कदाचित कदाचन। बोले सूखी लकड़ी और मूर्ख आदमी, ये दोनों झुकते नहीं है। और गुणवत्ता का, गुणवान का ये परिचय है, वो झुकता है, झुक गया। तो इससे राजा के अंदर सात्विक श्रद्धा है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। पर राजा किस उद्देश्य के लिए जा रहा था, इसका उत्तर इसी अध्याय में है, आगे के श्लोक में। प्रवृत्त प्रष्टुम किमिहारणम तत्, एक खंड वाक्य है। प्रवृत्त माने द किंग वाज एंगेज्ड, राजा ने अपने को लगा रखा था किस काम में, प्रष्टुम पूछने में। प्रवृत्त प्रष्टुम किम प्रश्न, क्या प्रश्न पूछने में, बोले तत् किम अरणम, बोले इस संसार में शरण लेने योग्य वस्तु अथवा व्यक्ति कौन है। सामान्य व्यक्ति ये प्रश्न सोच भी नहीं सकता। राजा के पास में सब कुछ होती है, उसके पास पावर है, उसके पास संपत्ति है, सब कुछ होते हुए भी राजा को लग रहा था मैं सुरक्षित नहीं हूं। प्रवृत्त प्रष्टुम किमि यह अरणम, ये संसार में शरण लेने योग्य वस्तु अथवा व्यक्ति है कौन। यानी कि राजा के रग रग में, राजा के दिल में ये बात बैठी हुई थी कि हमको निश्चित रूप से एक महत शक्ति, एक महती शक्ति के शरण में जाना चाहिए, पक्की बात है। लेकिन पूछे किससे, आप जानते हैं झोला छाप डॉक्टर के पास जाने से क्या हाल होता है। अगर इलाज करवाना है तो अच्छा डॉक्टर, अच्छा चिकित्सक मिले, उससे इलाज किया जाए। तो उस समय में कपिल भगवान की बड़ी प्रसिद्धि थी, आज भी है। कपिलो तत्व संख्याता, तत्व सांख्य योग की विवेचना करने में कपिल भगवान का बड़ा, बहुत बड़ा नाम था, आज भी है। तो राजा जा रहे हैं एक बहुत बड़े प्रश्न को पूछने के लिए एक बड़े व्यक्ति के पास। राजा जा सकते थे, ये तो ऐसा नहीं कि राजा सत्संग नहीं करता था, राजा खूब सत्संग करता था, इसलिए तो सत्संग के प्रति उनकी रुचि हुई। शास्त्र कहते हैं राम कथा के तेही अधिकारी जिन्हें सत्संग अति प्यारे। भगवान श्री कृष्ण कथा राम कथा के अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिन्हें सत्संग बड़ा प्यारा होता है। तो राजा का व्यसन था सत्संग, और राजा ठीक ठीक अपना कर्तव्य कर रहा था, क्योंकि राजा जानता था प्रजाओं को वस्त्र देना, प्रजाओं के लिए भोजन संसाधन जुटाना ये बहुत जरूरी है, पर साथ साथ ये भी जरूरत है कि प्रजा ये संसार में सुखी रहते हुए, अपने इहलोक से सुखी रहते हुए परलोक उसका अच्छा हो जाए, भगवत धाम चला जाए, एक राजा का कर्तव्य ही है। दुर्भाग्य है, भारत का इतिहास एक राजा के लिए बताता है, राजा पश्चिम भारत से पूर्व भारत के लिए ये प्रश्न को लेकर के जा रहा है, पर आज तक इतिहास नहीं बता रहे कि हमारे इस राजा को एक भागवत कथा सुन रहा है। यही इतिहास और वर्तमान में अंतर है। एक महान प्रश्न, एक महान व्यक्ति, एक महान व्यक्ति के पास जा रहा है राजा रहुगण। प्रश्न है किम अरणम, और उत्तर खोजने के लिए जा रहे कपिल भगवान के पास। ये विशेष बात है, इतनी बड़ी श्रद्धा थी, इतनी उनकी जिज्ञासा थी। ये जिज्ञासा की ये पहचान है कि तुम उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कितना बड़ा कदम उठाते हो। डॉक्टर अबुल कलम आजाद जो प्रेसिडेंट था, उन्होंने कहा था गुलाब की सैया पर लेटे लेटे किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं, बस सपना देखना ही सार्थक होता है। इस प्रश्न के जवाब में राजा चल पड़ा इतना लंबा सफर श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ। श्रद्धा क्या है, व्हाट इज श्रद्धा? श्रद्धा शब्द के संस्कृतगत अर्थ होता है कि श्रत सत्य धारयति इति श्रद्धा। हम लोगों ने बंगला भाषा में पढ़ा है श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, पर ये तो बंगला पद है, ये देसी पद है, पर तुम पूरी भारतीयों को कैसे समझाओगे जो बंगला नहीं समझता है? वो कहेगा हम इसको नहीं मानते। न्याय क्या कहता है? न्याय कहता है सत सत, सत और सत में भेद नहीं है। सत माने ईश्वर, वो ईश्वर को जो धारण करना चाहता है वो है श्रद्धा, सत धारयति इति श्रद्धा। तो राजा के मन में ईश्वर के प्रति अपार प्रेम था, अपार श्रद्धा थी, उस श्रद्धा के कारण वो जा रहा था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, राजा ने जब इनकी बातें सुनी तो तुरंत झुके, पालकी के नीचे आए, और नीचे आकर के यही श्लोक कहते हैं नाहम विशंके सुरराज बज्रा। हे विप्रश्रेष्ठ, हे भूदेवा, हे द्विजवर, ना तो मुझे वज्रधारी के वज्र से कोई भय है, ना हम विशंके, मैं भयभीत उतना नहीं हूं। अच्छा, वज्रधारी के वज्र से तुम भयभीत नहीं हो, फिर त्रिनेत्र वाले के त्रिशूल से, त्रिनेत्रधारी के त्रिशूल से भयभीत होंगे? ना नत्रक्षशूलान, ये त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के त्रिशूल से भी हम उतने भयभीत नहीं है। अच्छा, फिर यमराज के दंड से? बोले न यमस्य दंडात, फिर तुम किससे भयभीत हो? न अग्नि, अग्नि के ताप से मुझे उतना भय नहीं है, चंद्रमा के भाव से मुझे कोई भय नहीं है, सूर्य के उताप से हमें कोई भय नहीं है, और वित्त पर, वित्त माने धन, और पा माने पालन करने वाला, वित्तप माने कुबेर, ना कुबेर के अस्त्र से मुझे किस प्रकार का भय है। फिर तुम किससे भयभीत होते हो? आप इतने, आपके, आपका कंठ, आपकी आवाज, आपकी ध्वनि इतनी कंपित क्यों हो, क्यों ऐसा कंपित हो रही है? तो राजा कहता है मुझे एक भय सता रहा है। बोले कौन सा भय है? शंके भृशं ब्रह्म कुलाभमानात्। मैं अत्यधिक भयभीत हूं कि मुझसे कोई किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया, किसी ब्राह्मण का, किसी वैष्णव का अपमान हो जाए, इससे मुझे बहुत बड़ा भय है। क्यों राजा को इतना भय है? इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्यों डरता है ब्राह्मण अथवा वैष्णव के अपमान से? क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य ये है अपना स्वार्थ को रक्षा करे, अपने आध्यात्मिक संपत्ति की रक्षा करे। प्रहलाद महाराज कहते नते विदुः स्वार्थम गतिम ही विष्णुः। हमारा परम स्वार्थ है भगवान विष्णु की भक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चाहे व्यक्ति समाज में रहे, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में रहे, गरीबी मंजूर नहीं होना चाहिए। गरीबी सबसे बड़ी बेकार चीज है। अगर तुम समाज में रहते हो, अगर समाज में तुम गरीब हो, आप देखना गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। पूछता है दशरथ जी? नहीं पूछता। ऐसा कि कहावत है हमारे इधर, कहते गरीब की पत्नी सबकी भाभी है, मजाक उड़ाते हैं, धन नहीं है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ही कहते हैं आध्यात्मिक जगत में भी निर्धनता का कोई आवश्यक ज्यादा इज्जत नहीं है। बोले क्या है? बोले आध्यात्मिक जगत का, हाँ इतना ही कह सकते हैं, आध्यात्मिक जगत का धन और भौतिक जगत के धन में थोड़ा अंतर है। बोले भौतिक जगत का धन तो आप देख ही रहे हो जो लक्ष्मी है, पर आध्यात्मिक जगत का धन है प्रेम। चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ कहा प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। हे प्रभु, प्रेम धन के बिना ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है। इजंट इट? अगर कोई साधु बना है, उसके अंदर साधुता रूपी संपत्ति नहीं है, तो उसके जीवन में क्या आप चाहते हो? आध्यात्मिक जगत में जब जब हम लोगों ने कदम रखा है, अगर हम प्रेम धन प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बेकार है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। राजा को सत्संग में यह ज्ञान था, वो जानता था परम चरम संपत्ति ही भगवान विष्णु का प्रेम। किम यहां अरणम, किसकी शरण में जाना चाहिए? देखिए दो बात इसमें महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाते हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं है जो हमारी जैसे शरणागत की रक्षा कर सके, तो उनकी शरण में आप जाओगे तो आपका क्या होगा? वो भी मरेगा और तुम भी मर जाओगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसको चुनता है कि जो वास्तव में शरण लेने योग्य है। कपिल भगवान की मां ने उनसे ही कहा था त्वं त्वागताहं शरणम शरण्यम, त्वं त्वागताहं शरणम शरण्यम। आप ही शरणागत के एकमात्र शरण्य हो। अक्रूर जी भी यही बात कहते हैं कपंडित है। कौन संसार में विद्वान है जो आपकी शरण छोड़कर के दूसरी शरण ढूंढेगा? क्यों? क्योंकि शरणागत शरण्य वही हो सकता है जो शरणागत को हर विपत्ति से रक्षा कर सकता है। रावण ने भगवान शंकर की शरण ले ली, बड़ी समस्या खड़ी हो गई, राम जी के हाथों से मारा गया। पर विभीषण ने राम जी की शरण ले ली तो उसका क्या हो गया? रावण जीते जिंदा, जब रावण जिंदा था तभी विभीषण का राज्य तिलक हुआ। यह विशेष अंतर है। एकमात्र शरण योग्य है। इसलिए राजा के मन में ये प्रश्न बढ़िया था कि किमिहा अरणम, इस संसार में शरण लेने योग्य व्यक्ति कौन है, पूछने चला गया। इसलिए हमारा चरम स्वार्थ जहां बाधित हो रहा है, उस उद्देश्य के प्रति, उस बाधाओं के प्रति व्यक्ति को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है जहां हमारी भक्ति नष्ट हो रही है। इसलिए राजा कह रहा है कि छंके वृषम ब्रह्म कुलाव मानत, किसी भक्त का अपमान हो जाए तो उससे हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। जिस संपत्ति हम अर्जन करना चाहते हैं वो संपत्ति हमारे हाथ में नहीं आएगी, हमसे दूर चली जाएगी। राजा का ये भय था, और कोई भय नहीं है मेरे मित्रों, ये मुख्य भय यही है। अच्छा, उदाहरण क्या है आप देखिए, शास्त्रों में हजारों उदाहरण है, हजारों उदाहरण। उदाहरण के रूप में प्रथम उदाहरण है, आप लोग सभी जानते हो कि भगवान शंकर ने दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया था। कब किया था? दक्ष ने जब पहला अपमान कर दिया था भगवान शंकर का, शंकर चुपचाप उठे, बिल्कुल शांत भाव से चले गए, एक शब्द तक उच्चारण नहीं किए। लेकिन अपनी अर्धांगिनी परमा वैष्णवी सती जब इच्छा प्रकट की जाने के लिए, भगवान शंकर ने बहुत मना किया उनको। बल्कि सती जी ये तर्क देती है, देखिए पिता के घर में, पति के घर में, गुरु के पास बिना बुलाए भी व्यक्ति जा सकता है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा, हाँ जा सकते हैं, लेकिन पिता तुमसे ईर्ष्या करता है, हमसे ईर्ष्या करता है, वहां जाना खतरा है, तुमको नहीं जाना चाहिए। पर सती गई और सती का महा अपमान हुआ, किसने उनको पूछा तक नहीं। मां ने थोड़ा पूछा था, लेकिन और किसने नहीं पूछा। जब सती ने देखा कि उनको शिव भाग भी नहीं मिला था, देखा कि भाई शिव जी का भाग भी नहीं है, तब उन्होंने अब बहुत ही पश्चाताप किया। ये शरीर जिस पिता से उत्पन्न है, मैं जाऊंगी और हमारे पतिदेव हमको दाक्षायणी कह करके संबोधन करेंगे, मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूं। इसलिए योग अग्नि प्रकट करती हुई सती जी ने अपने शरीर को खत्म कर दिया वहीं पर। नारद जी वीणा बजाते हुए आगे बाबा जी के पास, बोले बाबा यहाँ क्या कर रहे हो, और वहां तुम्हारी पत्नी जा चुकी है। ओ, इतने सुनने मात्र से परमा वैष्णवी सती के इस तरह से अपमान हुआ है, बस भगवान शंकर की जटा बिखर गई है, डमरू डिबडिबी करने लगा, प्रचंड क्रोध उत्पन्न हुआ। भगवान रुद्र ऐसे ही क्रोधी है। अब एक जटा उखाड़ करके उन्होंने भूमि पर दे मारा, एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हुआ वीरभद्र उत्पन्न। तो वो भगवान शंकर से पूछता है, तम किम करोमि ते ग्रणंतम आहो बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ दक्षम स यज्ञम यही मदभट्टानम अग्रणी भट्टो भट्टांशको मे, जाओ दक्ष को अपने यज्ञ के साथ खत्म कर दो। हाथ जोड़ करके कहा, हे भूतनाथ, हे भूतपति, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, मेरे भट्टों में, रुद्र अनुचरों में तुम अग्रणी हो, तुम वीरभद्र हो, जाओ दक्ष को समाप्त कर दो। इस तरह से दक्ष का सती अपमान का उन्होंने बदला लिया भगवान शंकर ने। एक वैष्णवी है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। इस बात को ये भली भांति जानते थे कि वैष्णव अपराध करने से क्या होता है। श्री प्रभुपाद जी इंगित करते हैं कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़ीवा छिंडेतार सुखी जाए पाता। कोई बढ़िया से बगीचा बनाया है और उसमें कहीं कोई केरल का मतवाला हाथी आ जाए, वो हाथी क्या करेगा उस पे? वो जाएगा उस बेल को उखाड़ देगा, या तो उसको तोड़ देगा, फोड़ देगा, कुछ भी कर देगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमारी भक्ति जीवन में यदि कहीं अपराध रूपी मतवाला हाथी का उपद्रव होता है, उपाड़े या तो उस बेल को उखाड़ देगा, या तो उसको तोड़ मरोड़ करके फेंक देगा, सुखी जाए पाता। वो बेल और बढ़ नहीं सकती, वो वृंदावन जाना था, वो उसकी गति रुक जाती है, गति उसका प्रतिहत होता है। इस बात को भली भांति जानता था। इसलिए वैष्णव अपराध ब्राह्मण का अपमान, और ब्राह्मण अपराध से ज्यादा वैष्णव अपराध ज्यादा भयंकर है। आप देखिए,
यदि आप मनुस्मृति का पाठ करेंगे, यदि कोई ब्राह्मण शराब पीता है, बीड़ी पीता है, आप उसको दान करते हो, मनु महाराज कहते हैं तू नरक में जाएगा और अगले जन्म में वो सुअर बनेगा। इसलिए दान देने वालों को बहुत सावधान होना चाहिए। हमारे जितने अग्रवाल समाज है वो दान खूब देते हैं, लेकिन इस तरह से बीड़ी पीने वालों को दान करोगे तो अगले जीवन में सुअर बनोगे। लेकिन जहां तक वैष्णव की बात है, भगवान ने बिल्कुल ठप मुहर लगा करके कहा, अपीचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम् सच पूज्य यथा ही अहम्। यहां पर कनिष्ठ मध्यम उत्तम की बात तो बहुत दूर की रही, भगवान डांटते हुए कहा मैंने जब उनको साधु माना तुम कौन होते हो उसको व्यभिचारी कहने के लिए। अपिचित सुदुराचारो भजति इमाम अनन्य भाग, भजन तो कर रहा है। इसलिए वैष्णव अपराध के प्रति इतना सजग है। एक उदाहरण तो सती का है, दूसरा उदाहरण देखिए, जब विदुर जी त्याग करके चले जाते हैं, भगवान वेदव्यास क्या लिखते हैं, कहते हैं कौरव पुण्य लब्धः, कौरव सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। वो विदुर नहीं था, बोले वो विदुर कौन थे, बोले कौरवों का पुण्य पुंज था, और वो विदुर नहीं चले गए, कौरवों की समस्त पुण्य राशि खत्म हो गई, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धः। और उसके बाद इनका संहार शुरू हो गया। तीसरा उदाहरण, जिस समय रावण ने विभीषण का त्याग कर दिया, उस समय देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं रावण जब ने विभीषण को त्याग किया, असक ही विभीषण चला जब ही आयुहीन भय सत वही। गोस्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास बोले जिस क्षण रावण ने विभीषण का त्याग किया और विभीषण चल दिया, विभीषण ने बहुत समझाया भाई आपको परस्त्री को इस तरह से रखना नहीं चाहिए, राम परम पुरुषोत्तम है, आप उनके पास जाइए, उनसे क्षमा याचना करिए, उनकी अर्धांगिनी उनकी स्त्री को आप दे दीजिए, इससे आपका भला है। रावण का तो घमंड बहुत बढ़ा हुआ था, रावण कहा दुष्ट तू मेरा खा करके दुश्मन का गुण गाता है। यूं कह करके जब पद प्रहार किया तब विभीषण ने देखा बहुत अच्छा किया, हम तो यहां नहीं रहेंगे, हम चले अपने प्रभु के पास। असक ही विभीषण चला जब ही, ये कह करके जब विभीषण चला तो उसी समय आयु हेने भय सब तबही, उसी समय सबकी आयु खत्म हो गई। वो बाद में मरेंगे ये तो अलग बात है, पर यहां पर शास्त्र कहता है उसी समय सबकी आयु घट गई। कितना बड़ा नुकसान है। और भगवान शंकर अपने कमेंट देने में बिल्कुल पीछे नहीं रहे, इमीडिएटली कमेंट करते हैं, साधु अवज्ञा कर तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान शंकर का ये कमेंट है, अपनी देवी सती को कथा सुना रहे थे, साधु अवज्ञा कर तुरंत भवानी, इमीडिएटली आप किसी ब्राह्मण को अपमान कर रहे, अश्वत्थामा को तो उसका गला काटने के लिए भगवान ने कहा इसको मारो ये आतता ही है, भगवान ने उनको बचाव करने के लिए नहीं कहा, भले ही परीक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा अर्जुन इनको मार डालो ये जीने लायक नहीं है, एवं परीक्षता पार्थ, जो भी हो उसका एक पक्ष तो है कि भगवान ने कहा इसको मार डालो, और भगवान चाहते भी हैं उनको दंड देने के लिए, यहां तक कि भगवान ने अश्वत्थामा को शराब भी दे डाला, तू इतना दुष्ट है जाओ 3000 वर्षों तक तुम्हारा शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए अश्वत्थामा का शरीर 3000 वर्षों तक कुष्ठ व्याधि से ग्रस्त रहा, जो भी घूमता फिरता होगा उसके शरीर से पस निकलता होगा, महाभारत में वर्णन है। साधु अवज्ञा कर तुरंत भवानी, इमीडिएटली एक्शन है, क्या करे कल्याण अखिल के हानि, उसका समस्त कल्याण खत्म हो जाता है, आयु श्रेय यशो
आयु श्रीय यशो धर्मम लोकान आशीष एवच तानी सर्वाणी नश्यन्ति पुंसा महत अतिक्रमम। कंस के लिए भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कंस तो इतना दुष अपमान करते हो साधु संतों का, तो देख क्या हो जाएगा। आयु श्रेय जसो धर्मम लोकान आशीष एवच तानी श्रेयांशी सर्वाणी पुंसा महत अतिक्रम। एक कमेंट है, सुखदेव गोस्वामी के कमेंट है, भगवान शंकर की एक कमेंट है, करे अखिल कल्याण की हानि, नष्ट हो जाएगा। कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वो अपने जीवन को दांव पर लगा रहा है और नुकसान हो जाए उसको बर्दाश्त करेगा? नोबडी। कौन ऐसा मूर्ख होगा जिस लकड़ी को जलाने जा रहा है और उसी पर पानी का फवारा छोड़ेगा? ये उनके स्वार्थ का सदा खिलाफ है, प्रत्यक्ष घटना है। कुरुवंश ध्वंस हो गया, रावण की स्वर्णमयी लंका उजड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया और दक्ष का यज्ञ समाप्त हो गया। कर अखिल कल्याण की हानि। और तो और, ब्राह्मणों के वैष्णवों के निरादर से यदुवंश भी नष्ट हुआ। केवल लंका नष्ट नहीं हुआ राक्षस कुल, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण का वंश भी नष्ट हो गया। आप लोग सभी जानते हो, घर गृहस्थी वाले घर परिवार वाले कहते हैं थोड़े दिन घर में रहने के बाद थोड़ा घूमने चलते हैं। तो भगवान के बच्चों ने कहा प्रभु चलते हैं घूमने। कहाँ चले? प्रभास क्षेत्र चले। प्रभास क्षेत्र में सभी गए तीर्थाटन करने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए, पर वहां क्या हो गया? अब बुद्धि भगवान ने प्रेरित की, सांब का बेट वो जाम्बवती का पुत्र था शाम्ब, उसको स्त्री वेश बना करके पेट में कपड़ा दबा करके ले गए। विश्वामित्र कण्व अत्रि अंगिरा ये सब बड़े बड़े ऋषि इकट्ठा हुए थे प्रभास क्षेत्र में। तो उनमें से दो चार बालक, सांब देखने में बड़ा सुंदर था, उसको लड़की जैसे सजा करके ले गए। विश्वामित्र के पास जाकर के कहते हैं महात्मा जी अब बताइए, ये कजरारी आंखों वाली बड़ी शर्मिली है, पर ये गर्भवती है अंतर्वतनी है, अब इसका बालक होगा या बालिका? विश्वामित्र ने ध्यान लगाया, अच्छा इतना घमंड हो गया यदुवंशी तुमको, जाओ ऐसा श्राप दिया मुसल भो मंदा है, हे मूर्ख, अब ये कोई गर्भ पुरुष और अथवा बालक बालिका नहीं होने वाला है, ये एक लोहे का मूसल पैदा होगा, ऐसा कह दिया। सचमुच बालकों ने जब कपड़ा खोला, ओहो हो, लोहा का एक मूसल था, वो दडाम करके गिरा। जनई सती वो मंदा मूसलम कुल नाशनम, इतना नहीं कहा, चलो मूसल कह देते चभी चलता, बोले नहीं ये जो मूसल पैदा होगा ये कुल का नाश करने वाला होगा। और अंततः सबको भय हो गया। ये बालकों ने आकर के उग्रसेन से कहा कि महाराज बड़ी गलती हो गई। उग्रसेन झटपट बोला कि एक काम करो, इसको लो, इसको घिस करके उसको सागर में फेंक दो। किसी बलवान व्यक्ति से कहा घिसवाने के लिए, उसको घिसवा दिया, चूरा चूरा करके बाकी जो छोटे का टुकड़ा था उसको सागर में फेंक दिया। लेकिन होई सोई जो राम रचि राखा। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, जब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं, आप देखिए धान के बीज से धान होता है, गेहूं के बीज से गेहूं होता है, गेहूं के बीज से कभी सरसों होना किसने देखा है? लेकिन लोहे के मूसल से घास बन जाना ये एक ही उदाहरण है। वो मूसल था, उसको चूरा बनाए, उसको फेंक दिए, पर सागर के तरंगों माला से वो चूरा धीरे 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 बहता हुआ आकर किनारे लगा, और जो बन बन बना उसको बोलते हैं एर का। किसी अनुवाद में मैंने देखा है लिखा है मुंजा, मुंज घास, पैना कोई कोई पैनी घास है, ऐसा उत्पन्न हो गया। कहीं ऐसा होता है लोहे की चूरा से कहीं घास बनना? लेकिन इतना सारा काम होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण से किसने नहीं बताया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही प्रेरित करते हैं। शाप व्याजेन, खैर इसका अर्थ दूसरा था कि भाई भगवान चाहते थे कि हमारा कुल नष्ट हो जाए, वो चाहते थे, क्योंकि सब तो चले गए पर हमारा जो कुल रहा ये बहुत खतरनाक रहेगा, ये सब कुछ नष्ट कर देगा, इसलिए उनको नष्ट करना चाहते थे। भगवान ये सांप को खत्म करने वाले होते हुए भी उन्होंने नहीं किया, पर आप देखिए क्या हो गया, उस ब्राह्मण अपराध के कारण पूरा यदुवंश नष्ट को प्राप्त हो गया। ब्रह्म कुलाव मानात। और ये सारी बातें, ये सारी बातें राजा रघुगण ये जानते हैं कि वैष्णव अपराध का फल क्या होता है, इसलिए वो बहुत भयभीत हो रहे। ना हम विशंके सुरराज वज्रात, ना तो मैं वज्रधारी के वज्र से डरता हूं, ना तो मैं त्रिनेत्रधारी के त्रिशूल से डरता हूं, ना तो मैं दंडधारी के दंड से डरता हूं, फिर किससे डरते हो? बोले ब्रह्म कुलाव मानात। किसी ब्राह्मण से किसी वैष्णव से अपराध हो जाए हम इससे बहुत भयभीत होते हैं। जरा विचार करके देखिए, राजा जैसे महान बुद्धिमान व्यक्ति यदि वैष्णव के अपराध से इतना भयभीत हो रहा है, हम किस खेत की मूली है? हमको कितना डरना चाहिए? हमारा स्वार्थ है, भक्ति है। महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति के बिना, प्रेम के बिना हमारा दरिद्र जीवन हो जाएगा, हमें कोई नहीं पूछेगा। हम इधर के उधर के नहीं रहे, इधर के भी नहीं रहेंगे। घर का तो ना रहे, घाट का भी नहीं रहे। संसार से आ गए, पर जिस संसार में आ गए, जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है, तो कितने दुख की बात है। इसलिए राजा बारंबार यह कहे, छंके भृशम ब्रह्म कुलाव मानात, मुझसे ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, मुझसे वैष्णव का अपमान ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत डरता हूं। कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। वो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था, पूछा था कि आप कौन हो, कस्यासी, आप किसके हो, आप किस प्रयोजन से, कुत्रस्ते, कहां से आप आए हो और यहां आप कैसे हो? इस प्रकार राजा पूछता है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि राजा एक महान व्यक्ति था जिसके भीतर इतनी बड़ी सात्विक श्रद्धा थी, और थोड़ी सी गलती उनको महसूस हो रही है। कल जैसे आप लोगों ने सुना था, वृंदावन चंद्र प्रभु ने कहा था कि गलती करने के बाद जो गलती महसूस कर ले वो इंसान है, और जो गलती ना करे वो भगवान है, पर अब गलती पर गलती कर ले वो शैतान है। तो कम से कम हमको शैतान तो नहीं होना चाहिए। राजा इतना बड़ा कदम उठाता है, इसलिए जहां कहीं गलती हो जाती है वहां झुक जाने में भी ये स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ है। हम लोग उड़ीसा में कहावत कहते हैं, जब सागर की तरंगे आएंगी ना, उसमें झुकना ही काम है। अगर जो नहीं झुकेगा, एक हमारे मित्र आप जानते हो तृणादपी प्रभु अभी लंदन में है, अब वो सुनते होंगे इस बात को। वैसे हम जब मित्र की ऐसे बात करते थे, बोले जानते हो रमाकांत जी, हम गए सागर में स्नान करने के लिए, तो बोले बड़ी बड़ी तरंग आए, तरंग क्या करे? बोले हम एकदम डटे रहे। अरे भाई, तुम्हारी कितनी ताकत है, सागर की जो भयंकर तरंग है वो एक लहर आई और उनको उठा करके फटक दिया, और उनकी ये घुटना, ये आज भी दर्द है। सागर में जो चोट लगती है ना, वो चोट बहुत लंबे समय के लिए रहती है। और जो भी है मैं नहीं जानता। सो इसलिए बड़ा विनम्र निवेदन है, हम अपने से भी कह रहे हैं, अपराध से बहुत डरना चाहिए। यदि अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पाता। अच्छा, केवल वैष्णव अपराध नहीं है, वैष्णव अपराध और वैष्णवी अपराध दोनों है। भगवान शंकर ने वैष्णवी अपराध का बदला लिया सत्य। केवल कभी कभी भक्त सोचते हैं खाली वैष्णव अपराध हो गया, नहीं भाई, वैष्णव में वैष्णवी को भी लेना चाहिए। तो वैष्णवी प्लस वैष्णव इज इक्वल टू वैष्णव अपराध। तो भगवान शंकर ने वैष्णवी अपराध का बदला लिया। तो हम लोग जिस समाज में रहते हैं, यहाँ वैष्णवी भी हैं, वैष्णवी हैं, तो किसी के चरणों में अपराध ना हो जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? यस। अनन्य भाग अ माने नहीं, न माने कोई दूसरा। तो बोले इस भक्ति में कोई दूसरे का स्थान नहीं है। अनन्य भाग, भाग माने अधिकारी। तो जिसका कृष्ण का भजन जो कर रहा है वो केवल कृष्ण का ही करे, कृष्ण भजन में कोई दूसरा कोई ना आए। हम तो अपने सैया से प्यार करे वे हमार कोई का करिए, बिहारी भोजपुरी भाषा ये है कोई। हम तो अपने सैया से नेह लगे हमार कोई कहा करिए हो भाई, हम अपने सैया से प्यार करेंगे हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति, न अन्य। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर के जिसका जो इष्ट है, चैतन्य को छोड़कर के, राम को छोड़कर के कोई नहीं। अच्छा चलते चलते के अनाउंसमेंट में भूल गया था, कुरुक्षेत्र में कथा है 26 तारीख से, वहां का पूरा इंतजाम है, ब्रह्म सरोवर में स्नान भी है, रहने खाने की व्यवस्था है, जिनको जाना है वो कुरुक्षेत्र 25 तारीख को जा सकता है, वहां पे हर प्रकार की व्यवस्था है, वहां आप लोग कथा सुनिए। और कुरुक्षेत्र में कथा होगी, कुरुक्षेत्र प्रसंग है कुरुक्षेत्र, तो वहां पर कथा करेंगे और ब्रह्म सरोवर में स्नान करेंगे, जो भी वहां सेमंत पंचक वगैरह जो तीर्थ स्थान है उसका दर्शन करेंगे, फिर आए। हरे कृष्ण।